प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये बताया हुआ है कि सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभवों की अथॉरिटी है और इसके लिए बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे योग के प्रयोग करते रहो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करने से जो रिजल्ट्स मिलते हैं उससे हमारे पास अनुभव एकत्रित होते हैं। तो वो योग के प्रयोग क्या हैं, उनको कैसे कर सकते हैं, उनका परिणाम क्या निकलता है, इस तरह की कुछ बातें आज हमारे मध्यस्थ शेयर करेंगे, हमारे आदरणीय राजयोगी वरिष्ठ राजू भाई जी। हम राजू भाई जी का इस सभा में हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागतम। राजू भाई जी, आपको मालूम ही है कि इस समय लुधियाना से विशेष ग्रुप आया हुआ है और थोड़े से भाई बहन बहादुरगढ़ दिल्ली से आए हुए हैं और पांच छह भाई बहन हैदराबाद के हैं जो इस भर्ती में हैं। राजू भाई, मैं तो कहूंगी उनको विशेष इस ब्राह्मण जीवन में, यूं तो हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है, लेकिन मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि आपको विशेष वरदान प्राप्त है। आप ज्ञान रत्नों की खान है, आप एक ऐसी विशेष आत्मा है जिन्होंने प्यारे बाप दादा की पालना का, और न केवल वो लेकिन साथ साथ हमारी दादियों के सानिध्य का, दादियों की समीपता का विशेष अनुभव किया है और आज भी है। उनको ये सौभाग्य प्राप्त है। और जहां ऐसे बड़ों का सानिध्य मिलता है तो नेचुरल है कि मनुष्य का वो एक बहुत बड़ी लक होने के साथ साथ उसका भाग्य भी इतना ऊंचा बनता है। आज हम देखते हैं सारे विश्व के अंदर जो बाबा की मुरलियां हैं, बाबा के महावाक्य हैं, कैसे जल्दी से जल्दी सभी प्राप्त करते हैं, ये इसका श्रेय आपको भी जाता है। ये साफ ताली बजाना चाहिए तो बजा सकते हैं, लेकिन हल्की सी ताली, क्योंकि हम मौन भट्टी में हैं। आपने अपने इस वरदान को बहुत बखूबी निभाया है और उसको प्रैक्टिकल शेप दिया है। जो भी हमारे मधुबन में तीनों कॉम्प्लेक्स में जब भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, बाबा का सीजन हो, भट्टियां हो या अन्य कार्यक्रम हो, विशेष आपके क्लासेस भी आयोजित किए जाते हैं, आप अपने अनुभव युक्त बोलों से अनेकों को लाभान्वित करते हैं। आप ग्रामीण प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन है और उसके अंतर्गत रहकर भी आपने बहुत सेवाएं की हैं, और ऐसी सेवाएं की हैं जिसका रूप आप हम सबको मालूम है। वो सारा आज मैं वर्णन नहीं करूंगी कि कैसे इन्होंने योगिक खेती को किस प्रकार का रूप दिया, सरकार तक वो बात पहुंच चुकी है। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ भाई हमारे बीच हैं और आज आपको अपने अनुभव युक्त बोलों से लाभान्वित करेंगे योग के प्रयोग।
ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर आज गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट जिसके पास है वो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी कर सकता है और उसका प्रयोग भी कर सकता है। तो आज के दिन वो गिफ्ट सदा याद रही। कौन सी गिफ्ट मिली है? दिव्य बुद्धि की गिफ्ट है और बहुत डबल रिफाइन उसके अंदर पेट्रोल भी है, साधन भी है। क्योंकि अगर विमान बहुत अच्छा शक्तिशाली हो लेकिन पेट्रोल की कमी हो या ठीक पेट्रोल ना हो तो भी काम नहीं करता। तो हम सबको बाबा ने दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी और इस गिफ्ट के लिए बहुत सुंदर डबल रिफाइन पेट्रोल उमंग, उत्साह और नशा। अगर इससे उड़ना चाहते हो साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन, या अपने स्थान से मधुबन, चारों धामों की यात्रा करना चाहते हो तो आप सबके पास अपना साधन है। टिकट की जरूरत नहीं है। जब चाहे आन करो बुद्धि स्मृति का स्विच और वहां ही पहुंच जाओ। मधुबन की इस तपस्या भूमि में आप सब आए हैं। बहुत सुंदर वातावरण है, प्रकृति का बहुत अच्छा साथ है। मैं समझता हूँ यहाँ योग लगाने में किसी को मेहनत नहीं लगती। लगती है? नहीं लगी ना? बहुत सहज योगी जीवन है। और योग के जितने गहरे अनुभव यहाँ आप करना चाहो कर सकते हो। मैं तीन बातें पिछली बार भी कही थी जो भी ग्रुप आया था, कि बाबा ने हम सबको साइलेंस की भी बहुत अलग अलग विधियां बताई हैं। एक बाबा कहता है डीप साइलेंस का अनुभव करो, जैसे एकदम गहरे सागर के तले में चले गए। शायद आप लोगों के सामने साथ में सागर नहीं है, सागर की लहरों का अनुभव न किया हो, लेकिन जहाँ सागर हैं देखने जाते हैं, एक तरफ लहरें हैं और दूसरी तरफ सागर की गहराई है। लहरों में लहराने वाले भी बड़ा मनोरंजन का अनुभव करते हैं, और जो अंदर तले में जाना जानते हैं, डुबकी लगाना जानते हैं, वो बहुत कुछ नीचे से लेकर के भी आते हैं। हम सभी भी जब मन और बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं, वैसे भी आपने देखा होगा जो डुबकी लगाने वाले होते हैं वो आँख कान मुख सब बंद कर लेते हैं, पानी कहीं अंदर न चला जाए, और बंद करके फिर एक धक से नीचे चले जाते हैं। ऐसे ही साइलेंस में भी गहराई का अनुभव करने के लिए सब बातें जो देखते सुनते दिखाई देती सुनाई देती उनको बंद करना पड़ेगा। सिर्फ अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, अपने आप को एक लाइट माइट संपन्न, एक बहुत चमकती हुई ज्योति, एक शक्ति का अनुभव करो, और इस अनुभव के साथ साथ बाबा जो है जैसा है, एक ओर वो ज्ञान सूर्य है और दूसरी ओर ज्ञान सागर है। सूर्य भी है सागर भी है, दोनों से भेंट एक परमात्मा की गई है। तो हम सब पहले सागर की गहराई में जाते, ज्ञान की उछल के अंदर रूह रिहान करते करते एकदम तले में चले जाते। आत्मा जो है जैसी है बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित हो जाती, संकल्पों की हलचल शांत हो जाती, और इतनी अच्छी वो मिथ्या साइलेंस है, गहरे अनुभव हैं। जब उस अनुभवों से थोड़ा सा बाहर आते हैं तो ऊपर से सूर्य की किरणें हैं, परमात्मा सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर डाल रहे हैं। तो ये जब अभ्यास करते हैं तो जो सूक्ष्म कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई प्रकार के कड़े संस्कार हैं, सबसे बड़ा संस्कार तो हम सब आत्मा इस शरीर के साथ रहते रहते देह अभिमान के अधीन हो गई, और देह अभिमान ही अनेक प्रकार के विकर्म करा देता है। कर्मेंद्रियों की चंचलता ज्ञान से शांत नहीं होती जब तक कोई ने गहरे योग के अनुभव नहीं किए। बाबा कई बार साकार मुरलियों में मिसाल देते हैं कि सन्यासी लोग अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करने के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं, और आप बच्चे योग के प्रयोग करो, शीतल काया वाले योगी बन जाएंगे, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी, जीवन के अंदर सरलता मधुरता मिलनसारिता कई प्रकार के नेचुरल गुण अपने आप आ जाएंगे। अगर यथार्थ योग है तो कई लोग 10 साल 15 साल 20 साल से योग करते हैं लेकिन संस्कारों में परिवर्तन दिखाई नहीं देता, जैसे हैं वो संस्कार चलते ही रहते हैं। अगर यथार्थ विधि पूर्वक योग किया जाए तो विधि की सिद्धियां अवश्य प्राप्त होती हैं, और ये यथार्थ विधि जिसके अंदर मैं तीन प्रकार की साइलेंस आपको बता रहा हूं, एक तो एकदम डीप जाकर के डीप साइलेंस का अनुभव करें, चाहे आप आधा घंटा ही करें, पूरा 24 घंटे में आधा घंटे भी इसके लिए एकदम एकांत में जा करके एक के अंत में चले जाएं। मैं जो हूं जैसा हूं अपने स्वरूप का अनुभव करें। कोई भी ऐसा अच्छा समय निकाल के सब बातों से न्यारे बन करके, जैसे कोई ऋषि मुनि गुफाओं में चले जाते, ऐसी गुफा में, गुफा तो बाबा ने हमें कोई स्थूल नहीं बताई है, ये भ्रकुटी ही आत्मा की गुफा है। और इस भ्रकुटी की गुफा में जब हम आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर के बैठ जाते हैं, तो वो जो साइलेंस का अच्छा अनुभव है, वो आत्मा को एकदम शीतल बना देता है। उत्तेजनाएं समाप्त हो जाती, जो बहुत जल्दी आवेग आवेश कई प्रकार के विकार इंद्रियों की उत्तेजनाएं आती हैं, वो अपने आप नेचुरल शांत हो जाती है। आत्मा बड़ी सरल नेचर वाली हो जाती है। आपने अपनी दादियों को तो देखा है, पुराने हैं अधिकतर, कुछ नए होंगे। मैं दादी जी के बहुत समीप रहा हूं और कई बार उनके बिल्कुल बाजू में बैठ करके वाइब्रेशन लिए हैं, बिल्कुल साथ में टच करके, जैसे बैठ करके हाथ में हाथ लग करके। इतनी आत्मा शीतल काया वाली, जो बाबा कई बार कहते ना, एकदम शरीर भी कोमल हो जाता है, जैसे हड्डियां हैं ही नहीं। एकदम दादी ने वो तपस्या की, एकाग्रता का ऐसा अभ्यास किया, शायद आप लोगों ने कभी कभी नोट किया हो, ऐसे बैठ जाती थी अकेले में। अचानक कभी कभी मैं जाता था, नहीं आंख खोलते तो हम हिलाते थे, दादी कहती थी क्या है, कहां हो आप, मुस्कुराने लगते, बताते नहीं थे। इतनी डीप साइलेंस में होती थी तो चारों तरफ से बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, कोई को बोलने की दिल नहीं हो, कोई बोल रहा हो तो ऐसे लगता है कितने जोर से बोल रहा, बोलता भले धीरे हो, बिल्कुल आवाज की दुनिया से परे। और उसके कारण उनके संस्कार इतने शीतल सरल, सब प्रकार के जो लक्षण हैं प्रयोग से ही हुए, कोई प्रयोग बैठ के किया नहीं लेकिन अभ्यास किया, बहुत अच्छी एकाग्रता का। कभी कभी ये भी अनुभव होता था, मुरली सुना रही हैं, अभ्यास किया है तो जैसे भ्रकुटी के बीच में वो मणि चमक रही है, ये शरीर अलग है आत्मा अलग है, बोल भी रही है लेकिन वो आत्मिक स्थिति का अनुभव होता था। ऐसी डीप साइलेंस जब तक अनुभव नहीं की है तब तक इन इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता। जो बाबा कहता है, दुख सुख मान हानि जय पराजय निंदा स्तुति सब में समान स्थिति बन जाए। योगी के लक्षण गाए हुए हैं, ये सब निशानियां दादी जी के बिल्कुल प्रैक्टिकल जीवन से हमने देखी। कोई निंदा करके चला जाए, क्योंकि जो संस्था की हेड है, बड़ी है, कई बातें जब निर्णय होती हैं, फैसले लिए जाते हैं कोई बात, तो उसमें कुछ न कुछ कोई डिस्टर्ब होता है, कोई खुश होता है, संतुष्ट हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है। कई बार अनुभव करते थे कि एक व्यक्ति आया दादी के पास, गया को बहुत कुछ उल्टा सीधा जोर जोर से बोला, एक शब्द भी उसको उत्तर नहीं दिया, चुप। अथॉरिटी यूज नहीं की, तब जब की अथॉरिटी थी, किसी को बोल देती इसको पकड़ के ले जाओ निकाल दो यहां से, नहीं। ये आत्मा परवश है, अधीन है, बहुत नम्रता के साथ, बहुत धैर्यता के साथ उसकी बातों को सुना, समाया, सहन किया, कोई जवाब नहीं। और चलते चलते वो फिर आत्मा रियलाइज करती थी कि ये मेरी गलती थी, मैंने दादी को ऐसे अपमानित किया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर थोड़े समय के बाद, एक दो दिन के बाद, फिर आकर के सॉरी करेगी, अपने आप माफी मांगेगी। ये कई बार हम लोगों ने अनुभव किया दादी के साथ कि उन्होंने अपनी स्थिति को इतना धैर्यवत, इतना नम्रचित, सरल बना लिया कि कभी भी उनको ये नहीं आया ये मेरा क्यों अपमान करता है, ये कौन है। सुन लिया, ठीक है, आगे ध्यान देंगे, आपकी बात पर विचार किया जाएगा। अगर उत्तर दिया तो इससे ज्यादा नहीं दिया। अब ऐसी विशेषताएं आई योग के प्रयोग से। बाबा तो साथ है ही, वो तो करण करावन हार है, लेकिन उस आत्मा ने भी इतना पुरुषार्थ किया जिस पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप उसने अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बना ली। और अगर कभी अनुभव आप लोगों ने किया हो जो पुराने हैं, कि इसके तुरंत बाद 5 मिनट 2 मिनट के बाद भी अगर आप चले जाएं, तो उसका वर्णन नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति मेरे से ऐसा करके गया, इसने मुझे ऐसे बोला, नहीं, बीतती सो बीत गई, उसकी बात को दोहराना नहीं है। अगर आप सामने से पूछेंगे भी दादी कुछ हो रहा था क्या था, छोड़ो ये तो सब चलता रहता है, बड़ा घर है, बहुत सारे बातें हैं, इनकी बातों में अगर हम जाएंगे तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं रहेगा। बाबा को अगर हमें अपनी बुद्धि में बिठाना है तो बातों की परवाह नहीं करना, बातें तो आती हैं चली जाती है। ऐसी स्थिति जिसमें जरा भी हलचल ना हो, जरा भी आत्मा क्रोधित ना हो, उत्तेजित ना हो, मैं समझता हूं ये योगी आत्मा के लक्षण है। हम सब योग कर रहे हैं और अपनी अपनी विधि अनुसार कर रहे हैं, लेकिन अगर यथार्थ योग का गहरा प्रयोग किसी ने अनुभव किया है तो शीतल काया अपने आप हो जाएगी। ऐसा अनुभव करो डीप साइलेंस के द्वारा। और दूसरी स्थिति है साइलेंस की, बहुत स्वीट साइलेंस, स्वीट साइलेंस, जैसे बहुत रस है, मिठास है, सुखी शांति नहीं है, ऐसे बैठे हैं जैसे सूखे सूखे, चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं है। कई बार एक जगह में एक क्लास कराने गया, सारा क्लास एकदम ऐसे लगे उलझा मूंझा हुआ है, एकदम जरा भी चेहरे पर रौनक नहीं। मैं इतनी दूर से गया हूँ क्लास कराने के लिए, बहनों ने इतनी बड़ी बातें सुनाई, ये भाई ऐसे आया ऐसे आया, यहाँ की नहीं हमने भारत की, विदेश की बात, ढाका में मैं गया था, बांग्लादेश में, पूरा क्लास, अधिकतर सब अपने हिंदू ही थे लेकिन कुछ मुस्लिम भी थे। भाई मोबाइल इन बहनों के बंद कर दो। तो जब ऐसा क्लास देखा तो मेरे क्लास कराने की हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने क्या इनका क्लास, क्यों इतने मूंझे हुए हैं सब, चेहरे उदास निराश। तो मैंने कहा भाई एक गीत बजाओ पहले, किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कराना सिखा दिया। पहले गीत बजवाया मैंने क्लास में, और बजवाने के बाद फिर मैंने पूछा कारण क्या है, आखिर इतनी ऊंची बाबा की पालना मिल रही है, इतना प्यारा परिवार मिला है, इतने ज्ञान रतन लेने के लिए आप दूर दूर से भाग भाग करके आते हो, चेहरे पर वो रौनक वो खुशी क्यों नहीं दिखाई देती, हमारी साइलेंस ऐसी तो नहीं एकदम डेड हो जाएं। एक बार बाबा ने कुछ दिन मुरली में कहा कि शरीरी बनना माना सुन्न हो जाना, जब देखा ये बच्चे सुन्न का अर्थ अलग ले रहे हैं तो दूसरी बार मुरली 8 दिन के बाद चला दी, बच्चे सुन्न अवस्था योग की है ही नहीं, 8 दिन में चेंज कर दिया, देखा होगा नोट किया होगा, 8 दिन पहले कहता शरीर ही बनना माना सुन्न अवस्था है, और 8 दिन के बाद वही मुरली चल रही है कि शरीर ही बनना योग, सुन्न होना योग ही नहीं है, ये तो बेहोशी है, जिसमें होश ही नहीं रहता। कारण थे उस देश के, कुछ कारण थे उस समय, मैंने फिर नोट किया क्यों इतना इनको खुशी नहीं है। और उसका मेन एक कारण मैंने देखा जो वहां की ट्रैफिक का कारण, किस घड़ी कब हम पहुंचेंगे, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा रास्ते में लगेगा, है 15 मिनट रास्ता, लेकिन वो जाम जो लगता था ट्रैफिक जाम के कारण, लोगों के चेहरे पर टेंशन था और कोई कारण नहीं था ज्यादा, लेकिन एक ट्रैफिक इतनी जबरदस्त थी। जब मैं खुद गया, मैं भी फंसा उसके बीच में, तब मुझे पता चला कि इनकी खुशी गायब क्यों होती है। ड्राइवर एकदम मस्त, कुछ नहीं उसको संकल्प चल रहे हैं, वो ड्राइवर स्टीयरिंग पर ऐसे सिर रख करके लेट गया, सो गया। मैं, भाई चलना है कि खड़े रहना? कहता कहां चलेंगे बाबूजी, सब जाम पड़ा है, सब जाम है, कब खुलेगा कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आप भी बैठे रहो मैं भी बैठा हूं। नहीं, इनकी स्थिति हमसे शायद अच्छी है, हमको तो प्रोग्राम में जाना है, हमको तो पता है कितने टाइम पहुंचना है, लेकिन ये लोग अभ्यासी हो गए। हम सब ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, सबके आगे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में हमारी स्थिति हलचल में ना आए, बिल्कुल अचल रहे, खुशनुमा रहे, मग्न रहे, मस्त रहे, उसके लिए योग के प्रयोग करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा, नहीं तो थोड़ी देर में ही पसीना हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हाय तोबा मचा देंगे, ड्राइवर को गालियां देंगे, ट्रैफिक को गालियां देंगे, नियमों को उल्लंघन करने की बातें करेंगे, क्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी बातें हलचल में आ जाती है आत्मा। प्रैक्टिकल ये सब हो रही है घटनाएं, और ऐसे समय में योग की शक्ति बहुत मदद करती है। योग हमारा सिर्फ है आत्मा परमात्मा का ज्ञान लेकर के बैठ जाना, सूखे सूखे होकर के रहना नहीं है। अच्छा मनन चिंतन हो, स्वीट साइलेंस का अनुभव हो, ऐसे जब समय आते हैं ना, स्वीट साइलेंस का अनुभव करना चाहिए। क्या ड्रामा है, कैसे एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कितना बाबा ने कितना गहरा राज सुनाया है, हम अपने स्वीट साइलेंस में नहीं बैठ सकते क्या? लेकिन होता है, देखो आप सब चेक करना, मैं भी करता हूं कई बार, ऐसे समय पर जब फंसते हैं तब पता चलता है। प्लेन अगर छूटने वाला हो और हमारी ट्रैफिक जाम हो जाए तो क्या हलचल होती होगी, लेकिन अगर ये अनुभव किए हुए हैं, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा अच्छा बाबा ने दिया है कि ड्रामा एकदम निश्चित और कल्याणकारी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, जो होने वाला है वही होगा, लेकिन हम अपना प्रयास नहीं छोड़ते, प्रयास भी नूंदा हुआ है, प्रयास तो हम करेंगे, लेकिन हलचल में आकर के टेंशन में आ जाएं, माना योगी जीवन नहीं है। योगी जीवन जिसके अंदर बिल्कुल स्थिरता आ जाए, स्थित प्रज्ञ कहते हैं योगी को, स्थिति हलचल में बिल्कुल ना आए, एक रस, और वो तभी हो सकती है जब हम सब बीच बीच में उस स्वीट साइलेंस में बहुत मधुरता के साथ, समनिकता के साथ बाबा से शक्ति लें, सकास लें, मदद करें, बाबा से बातें करें। और उस स्वीट साइलेंस के बाद कभी कभी वो भी अनुभव करना चाहिए जो बाबा ने कहा है, डेड साइलेंस। उसको बदला है बाद में, डेड साइलेंस के स्वीट साइलेंस में किया है, लेकिन वो स्टेज भी बाबा कई बार कहते हैं बच्चे परम धाम घर की अनुभूति करो। परम धाम घर की अनुभूति क्या है? उस परम धाम के अंदर तो आत्मा जब जाती है या रहती है तो कोई हलचल नहीं है, कोई संबंध नहीं है, संकल्प भी शून्य है। शिव बाबा को भी वहां तो संकल्प नहीं आता होगा, समय अनुसार जब नीचे उतरता है, सूक्ष्म वतन में आता है, तब संकल्प की सृष्टि शुरू होती है, समय आता है। लेकिन परम धाम घर की साइलेंस जिसके अंदर कोई संकल्प नहीं, हलचल नहीं, कभी कभी उसका भी अनुभव करना चाहिए, उसको हम डेड साइलेंस कह सकते हैं, कोई भी दूसरे हलचल के संकल्प नहीं है। और जब ऐसी गहरी साइलेंस के अनुभव होंगे, बिल्कुल मन और बुद्धि स्थिर एकाग्र हो जाएगी, तो एकाग्रता के बाद प्रयोग शुरू होते हैं। जब जमा है शक्ति तब प्रयोग किया जा सकता है, ही नहीं तो प्रयोग क्या करेंगे। जैसे हमारे पास आजकल कैड के अंदर डॉक्टर्स आर्टरीज को खोलने के लिए योग के प्रयोग कराते हैं, सुना होगा आपने, यहाँ हमारे पास चल रहा है प्रोजेक्ट, आर्टरीज जो ब्लॉक हो जाती हैं बिना ऑपरेशन के योग के प्रयोग से खोलने की विधि बताते हैं। तीन विधियां हैं, एक योग है, एक डाइटिंग है, खान पान की है, और एक एक्सरसाइज है। तीन को साथ लेकर के इस प्रयोग कराते हैं, लेकिन अधिकतर उसमें योग का बहुत बड़ा महत्व है। जब आत्मा अपने सातों गुणों को रियलाइज करती है, इन सातों गुणों में जब सत्वगुणी है तो उसके पास कोई रोग है ही नहीं, सत्व प्रधान है, इसलिए देवताओं का कोई डॉक्टर नहीं है। अभी हमारे पास कई प्रकार के शारीरिक बीमारियां समय पर समय हवा पानी के परिवर्तन से, पुराने हिसाब किताब तो जो हैं ही, लेकिन वर्तमान समय जो हमारा खान पान अशुद्ध हुआ, हवा पानी अशुद्ध हुई, जलवायु में परिवर्तन आया, तो कुछ न कुछ शरीर पर इफेक्ट आते हैं। और इसके कारण हम लोग दवाइयों का, बहुत सारी बातों का अपनाते हैं, उनको यूज करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर निश्चय बुद्धि होकर के इस पर भी योग के प्रयोग किए जाए, बहुत सारे अनुभव शायद आप लोग मैगजीन्स पढ़ते होंगे, ज्ञानामृत में आते हैं। मेरा तो एक नेचर बनी है कि मैं जब ज्ञानामृत मेरे हाथ में आती है, मैं पहले पूरी पढ़ डालता हूँ, और उससे बहुत अच्छे अच्छे कईयों के अनुभव सुनने को मिलते हैं। कई बीमारियां उनसे ठीक कर रहे हैं लोग, कई प्रकार के इलाज कर रहे हैं। अभी अभी एक बहन आई परसों मेरे साथ बैठी थी, दार्जिलिंग से आई थी, कहती भाई जी हमने एक प्रयोग किया, डॉक्टर्स ने जिस पेशेंट को कहा 4 महीने से अधिक नहीं रह सकती, कैंसर फैल गया है, वो 7 साल तक बिल्कुल जीवित रहे, कुछ दवाई नहीं लिया उसने। क्या प्रयोग किया तुमने, क्या कराया उसको? कहती केवल उसको पानी चार्ज करके दिया, योग में पानी चार्ज करके बाबा के कमरे में रख करके योग करके कहा इसको पी लो बस। और प्रयोग करते करते वो आत्मा इतनी स्वस्थ हो गई, कहते 7 साल तक उसको कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद लाइन लगती है कि हमें भी पानी दे दो। हमारे शुद्ध विचारों का, हमारी आंतरिक भावनाओं का प्रभाव ये प्रकृति के तत्व बहुत जल्दी स्वीकार करते, लेकिन हमारा निश्चय पहले अटूट होना चाहिए, हमारी भावनाएं उससे जुड़ी होनी चाहिए। आज हम जब योगिक खेती कहते हैं, प्रयोग करा रहे हैं, मैंने देखा है कई भोली भोली माताएं, अभी कल एक सूरत की माता यहां से शहर से हमको इतनी तूरी भेजी, तूरी, और 5 साल से वो योग के प्रयोग करती है, कोई भी खाद नहीं डालती, कुछ भी नहीं करती, इतनी बड़ी बड़ी तूरी निकाल रही, सब्जी निकाल, बहुत भावना है, प्रकृति से बहुत प्यार है, बाबा से भी प्यार है। कहती मैं और कुछ नहीं करती हूँ, बस बाबा को कहती हूँ बाबा ये ब्राह्मण परिवार खाएगा, ये बहुत अच्छी फसल इसमें होनी चाहिए, खूब कमा रही है, घर का खर्चा चला रही है, और जब से इंटरेस्ट पर जहां जरूरत होती सब्जियां पहुंचा देती है, प्रयोग कर रही है। ऐसे कई स्थानों पर भावना से, भावनात्मक रूप से बाबा को प्यार से याद करते और शुद्ध संकल्प से उस पौधों से बात करते हैं। किसी भी पौधे के आगे अगर आपके पास गमले में भी पौधे हैं, खेती नहीं है, कोई हर्जा नहीं, आप अपनी छतें हैं, छतों पर भी प्रयोग करके देख सकते हो कि तुरंत हमारे शुद्ध विचार, अच्छे विचार, भावनाएं फटाफट उससे जो संकल्प करो रिटर्न मिलने लगता है। मैं एक जगह दिल्ली में गया, दिल्ली में बगीचे के अंदर एक माता ने नींबू के झाड़ छोटे छोटे थे, ढक करके रखे थे, कहता भाई जी हमारे घर में इतने नींबू होते हैं जो हम पड़ोसियों को भी खिलाते हैं, देते हैं, भेजते हैं, इतने होते हैं, और कोई खाद नहीं डालते, गमलों में बोए हुए हैं, छोटे छोटे झाड़ थे, खोल के दिखाया एकदम पेड़ लदा हुआ था नींबू से, क्या करती हूँ मैं, बहुत प्यार से उसको पानी डालते समय बाबा की किरणें डालती हूँ, सकाश देती हूँ और एकदम ऐसे फूल आते हैं, ऐसे फल लग जाते हैं। हमारे शुद्ध विचारों का प्रभाव, हमारी भावनाओं का प्रभाव प्रयोग करके देखना चाहिए। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, हमने सुन लिया हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं हम भी प्रयोग करके देखें। योग एक बहुत बड़ी शक्ति है। कोई बाबा से मांग नहीं रहे कुछ, हमारी कोई डिमांड नहीं है कि बाबा आप ये कर दो, लेकिन अगर शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति पर बाबा की किरणें आ रही हैं, डायरेक्ट हमारा कनेक्शन उससे जुटा हुआ है, तो वो किरणें जिधर हम संकल्प करेंगे उधर प्रयोग होने लगेगा, संबंध ठीक हो जाएंगे। सोचते क्या हैं? दो बातें सोच के अगर हम प्रयोग करते हैं, ये व्यक्ति के संस्कार बड़े कड़े हैं, ये तो सुधरने वाला नहीं है, हम प्रयोग कर रहे हैं क्या होगा है? अगर हम पहले ही उसके प्रति कोई गलत भावना रख रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे संभव कैसे है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कोई हमारा योग चमत्कार थोड़ी है, बाबा तो कहते हैं ऐसे तो कुछ नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई करो, ये करो, वो करो, अपनी बुद्धि लगा करके अपने संकल्पों में नेगेटिविटी भर करके अगर हम कोई भी प्रयोग करेंगे कहीं सफल नहीं होंगे। इसलिए बहुत शुद्ध भावनाएं लेकर के, कभी ऐसे संस्कार है मान लो मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है, मेरा गुस्सा नहीं जाता है, या मेरे अंदर आलस्य है, योग में बैठते ही नींद आती है, मुरली सुनते नींद आती है, बिस्तर पर जाते तो नींद फिट जाती है, लेकिन जब कोई अच्छे कार्य में जाते हैं वहां नींद आना शुरू हो जाते है, तो ये ग्रहचारी है ना। कोई सूक्ष्म बोझ है, चाहे पास्ट का बोझ हो, चाहे वर्तमान अवज्ञाओं का बोझ हो, कोई इतने अच्छे माहौल में बैठे, इतने अच्छे वातावरण में आए, कमाई के समय अगर उसको नींद आ रही है, तो ग्रहचारी नहीं है क्या? चलो कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, शुगर बढ़ा हुआ हो, बीपी कुछ नीचे ऊपर हो, कोई कारण हो, एक दो होता है उसमें भी होता है, लेकिन अगर ऐसे सुंदर वातावरण में भी अगर मुझे कुछ न कुछ ऐसे इधर संकल्प चल रहे हैं, उधर संकल्प चल रहे हैं, मुरली के समय बुद्धि भटक रही है, खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है, उसका मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है, माना कुछ तो है गड़बड़। उन संस्कारों पर अगर हम चेंज नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो चेंज कैसे करेंगे? तो पहली, वास्तव में कोई भी परिवर्तन की प्रयोग के लिए मुझे महसूस जरूर करना चाहिए। जब तक एक बहुत बड़ा आवरण मुझे जो दिखाई देता है वो देहमान का, देहमान के आवरण के कारण कभी कभी हम अपने को बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार, बुद्धिमान, बहुत अच्छे योगी समझ करके चलते हैं, और फिर कुछ न कुछ ऐसी कमियां संस्कारों के रूप में अंदर वो छिपी हुई रहती हैं, उनको निकालने के लिए कभी ये नहीं सोचते इसको मुझे निकालना चाहिए, ये मेरे लिए विघ्न रूप है, मेरे परिवार के लिए विघ्न रूप है, उसको बहुत गहराई से एकांत में जाकर के महसूस किया जाए, और महसूसता के बाद उसके लिए तपस्या की जाए कि इसको मुझे खत्म करना है, ये मेरा संस्कार। मान लो बाबा हमें बहुत दिनों से तीन प्रकार की सिविलाइज्ड की विषय में मुरलियां चला रहा है, साकार मुरलियों में सिविलाइज्ड शब्द आता है बार बार, सिविलाइज्ड, सिविल बनाओ, आंखों को सिविल बनाओ। अभी तक भी कोई बच्चे की सिविलाइज नहीं हुई है, एक मुरली ऐसी चली थोड़े दिन पहले, मेरा बहुत ध्यान इस बात पर जाता है क्योंकि जब भेजता हूं तो पहले पढ़ता हूं, बाबा ये क्या सर्टिफिकेट दे रहा है, कोई आत्मा अभी तक सिविलाइज नहीं बनी है, क्रिमिनल पना खत्म नहीं हुआ है। आप सब विचार करना, सचमुच मैं बाबा का बच्चा बनाऊं, अभी तक मेरी आइज किसी देह पर जाती है, नाम पर, रूप पर, उसके गुणों पर अगर जा रही है, माना मेरी अभी तक क्रिमिनलिटी खत्म नहीं हुई है, और इस क्रिमिनलिटी को खत्म करने के लिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयोग करने पड़ेंगे। आंखें हमारी बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, निर्मल बन जाएं, जिसको दृष्टि दे वो निहाल हो जाए, बाबा कहता नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, हमारी नजरें उसको बदल दे सामने वाले व्यक्ति को, आजकल बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो बहुत डिप्रेशन में रहती हैं, या कई जगह पर कोई ना कोई छाया के प्रभाव में आ गई हैं, भटकती हुई आत्माओं की छाया है या कोई तंत्र मंत्र जंत्र वाली छाया है, बहुत सारी छाया के अंदर आत्माएं रहती हैं और उसके कारण उनका योग नहीं लगता, बहुत भारी भारी अनुभव होता है, खुशी नहीं होती है, इतनी सब प्राप्तियां होते हुए भी, इतना श्रेष्ठ जीवन होते भी उसका नशा नहीं रहता, योग क्या लगेगा? क्या ऐसी आत्माओं को हम सब मदद कर सकते हैं? है ऐसी योग की शक्ति? अगर है तो प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना? दिखावा नहीं करना है, ऐसे नहीं खड़े होकर उसको दृष्टि देने लगना, लेकिन एक अंदर से शुभ भावना की शक्ति से कि ये आत्मा का भला हो जाए, ये आत्मा इससे मुक्त हो जाए। बहुत श्रेष्ठ भावना, प्रयोग के लिए भावनाओं का स्टॉक चाहिए। चलो इसका कोई हिसाब किताब होगा, ये तो है ही ऐसी, ये तो करता है, अरे बेचारी कर रही है, परवश है, कोई कारण से है। हमारे अंदर रहे कि आत्मा बिल्कुल इन विघ्नों से मुक्त हो जाए, मैं ऐसी शुभ भावना की शक्ति इसको दूं ये बदल जाए, इसको बाबा इतनी शक्ति दे दे। देगा तो बाबा ही, मैं क्या दूंगा, लेकिन मैं शुभ भावना तो रख सकता हूं। मेरे सामने ऐसी एक आत्मा आई, मैं आपको बताता हूं। एक जगह पर मैं गया था, एक माता अपनी बेटी को लेके आई और आते ही जब वो कहने लगी भाई जी 2 मिनट मेरे को मिलना है, मैंने कहा मैं क्लास करा के आया हूँ, थोड़ा सा बैठो आप, मैं आता हूँ। तो मैं जब कमरे से बाहर आया, बैठा सामने, बैठते ही वो लड़की ऐसे झूमने लगी ऐसे, तो मैंने पूछा क्या हुआ, इसकी तबीयत ठीक है? तो माता पहले तो संकोच करे, बताए नहीं। मैंने कहा नहीं, बोलो बोलो क्या है इसको, क्यों मेरे साथ मिलाने लाई हो? कहती भाई जी कुछ दिन पहले इसके पिताजी ने शरीर छोड़ा है और पिताजी का इस कन्या में बहुत मोह था, बहुत अटैचमेंट थी, और उसका एक लक्ष्य था कि इस बच्ची को, अकेली बेटी है, परिवार में कोई बेटा नहीं है, एक ही थी। ज्ञान में हम आ गए, 2 साल हुए हम तीनों ज्ञान में चले, लेकिन वो अचानक वो शरीर छोड़ गए, हार्ट फेल हो गया। जिस दिन से वो शरीर छोड़ी, वो आत्मा इसको छोड़ती नहीं, इसके पीछे लगी हुई है, बच्ची के अंदर प्रवेश कर जाती है, और अभी वही आ गए हैं सामने, आपके सामने आए हैं। तो मैं बैठा था, ऐसे दृष्टि दी, बहुत भावना से प्यार से पूछा आप कौन है? पहले तो नहीं बोल रहा था, फिर मैंने कहा नहीं बोलो, आप हैं कौन? फिर अपना परिचय दिया, बताया मैं ऐसे ऐसे, क्या लक्ष्य है, आप अपनी बेटी को इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? तो बोला मैं परेशान थोड़ी कर रहा हूं। अब आप समझ सकते हो, आत्मा मोह के कारण उसमें अटकी हुई है, ना मुक्ति हो रही है, ना जन्म मिल रहा है, कुछ नहीं होगा, मोह था, मोह के कारण अचानक शरीर छूटा और शरीर छूटते ही उस बेटी के पास चक्कर लगाने लगा। अब वो 15 दिन कम से कम हुआ होगा, स्कूल जाती है तो बच्चे भागते हैं उसके पास नहीं आते हैं, खाना नहीं खाती है, साथी वह सब छूट गए, पढ़ाई छूट गई, इतना डिस्टर्ब, इतना टेंशन घर के वातावरण में। मैंने उसको बहुत प्यार से दृष्टि दी, बहुत शुभ भावना रखी, हमने देखो अगर आप पिता के रूप में थे, अभी तो नहीं है पिता, आप इसके पिता तो इसका शिव बाबा ही है, तो पिता और पुत्री के संबंध में भी आपके अंदर ये रहम होना चाहिए। समझाया उसको प्यार से, कल्याण इसी में है कि आप इसको छोड़ दें, बाकी इसको जो बनना होगा बनेगी, जो इसकी तकदीर होगी, आपने कहा था पूरा करेगी संकल्प। पहले तो सुनता रहा, पहले कुछ नहीं बोला, फिर मैंने उसको मधुबन का मेरे पास टोली थी खिलाई, ऐसे दृष्टि लेते लेते ऐसे चला गया। 2 साल हुए मुझे, अभी बहन मिली, वो कहती भाई जी वो मुक्ति उसको, तब से लेके मुझे तंग नहीं किया। हम सब के अंदर इतनी शुभ भावनाएं, इतना रहम, इतना अपने परिवार के प्रति, ऐसे वातावरण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर शक्ति नहीं है, बहुत पावर नहीं, योग की शक्ति नहीं है, शुभ भावनाओं की शक्ति नहीं है तो हम भी कहीं ना कहीं चक्कर में आ सकते हैं। इसलिए हरेक ये ध्यान रखना कि ऐसी एकाग्रता की, शुभ भावनाओं की, साइलेंस की शक्ति हम सबके पास जमा हो। जमा होगी तो जो संकल्प करोगे वो सिद्ध होने लगेंगे, अपने आप इन आत्माओं को मदद मिलेगी। और इस वातावरण के बीच में अभी इसके प्रयोग बहुत आवश्यक है। जहां पर भी ऐसे हैं, कई आत्माएं बाबा कहते हैं अंत समय में आएंगी आपके पास, ज्ञान सुनने नहीं आएंगी, योग भी नहीं सीख पाएंगी, लेकिन शांति के लिए, स्नेह के लिए, जो से वंचित रही हैं, वो लेने के लिए आपके घर पर, दर पर आएंगी कि आपके पास इतनी शक्ति है, या खुद में ही उलझे हुए हैं। प्रयोग करने की बजाय खुद ही अगर अपने आप को हम शांत नहीं कर पाते, अपने संकल्पों को पवित्र शुद्ध नहीं बना पाए, क्योंकि योग की प्रयोग की विधि के लिए आपके संकल्पों में बहुत पवित्रता की शक्ति चाहिए। योग बल है क्या? कई बार ऐसे थोड़ी सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं और उसकी किरणें मेरे ऊपर आ रही, यही योग बल है क्या? योग बल के साथ पवित्रता का बल जुड़ा हुआ है। आत्मा बिल्कुल प्योर है, निर्दोष है, कोई के दोष उसके पास नोट नहीं है। ये क्या करता, वो क्या करता, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अगर इन हलचलों में मैं फंसा हुआ हूं तो योग बल कहां जमा होगा। बाबा की याद से सब शक्तियां मेरे अंदर जमा हों और उन शक्तियों का मैं प्रयोग करूं, इसको योग बल कहा जाता है। इसलिए जब ऐसे समय मिलता है, सुबह शाम, जब आप अपने कार्य व्यवहार से, बीच बीच में भी, ऐसा नहीं है कोई घंटों बैठ जाना है, कार्य व्यवहार तो सबके पास है, करने चाहिए, 8 घंटा 10 घंटा शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो, लेकिन बीच बीच में शरीर से डिटैच होने का अभ्यास, बस और कुछ नहीं करो। ये अनुभव करो कि मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है, मैं इनकी मालिक आत्मा इस भ्रकुटी की कुटिया में निवास कर रही हूं। और इसके लिए एक व्रत लेना पड़ेगा, वो व्रत है मुझे बाह्य मुक्ता में नहीं आना है, अंतर्मुखी रह करके प्रयोग करने हैं। जितना आप अंतर्मुखी होकर के अंदर जाएंगे, साइलेंस के अंदर अपने स्वरूप को देखने का अभ्यास करेंगे। अगर योग नहीं लगता तो एक और विधि है, कई बार होता है कि कई बातें होती हैं बुद्धि के अंदर, मजा नहीं आता योग के अंदर। बाबा ने कुछ दिन पहले एक विधि सुनाई है, मुझे वो भूली नहीं है, बार बार याद आती है। बच्चे और कुछ नहीं करो, बाबा के पास ऐसे बैठ जाओ, बाबा की आंखों में देखते रहो, आंखों में आंखें डालो, एक नजर से नजर मिलाओ। एक मुरली चली कुछ दिन पहले, अंडरलाइन किया होगा, नजर से नजर मिलाओ, बाबा को देखते रहो, बस इतना तो कर सकते हैं। इसमें तो कोई बुद्धि नहीं चलती, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, बाबा बस तुझे देखता रहूं, बस भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई मणि को देखने का अभ्यास करो। देखते देखते आप इस शरीर से डिटैच हो जाएंगे, बाबा उड़ा ले जाएगा। ये फोटो तो नहीं है जिसके सामने हम बैठते हैं, हम सब जानते हैं बाबा का भी अव्यक्त पार्ट बहुत फास्ट गति से चल रहा है। अव्यक्त साकार में नहीं आता तो इसका मतलब उसका पाठ पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक ब्रह्मा की आत्मा इस चक्र के अंदर से निकल नहीं सकती है, क्योंकि स्थापना का कार्य उसका है। जब तक प्रत्यक्षता नहीं हुई है तब तक वो आत्मा अव्यक्त रूप में इस यज्ञ को संपन्न करके ही वापस जाएगी, ये निश्चय पक्का होना चाहिए। इसमें कोई दुविधा के संकल्प ना आए कि अभी बाबा नहीं आता इसका मतलब कोई जन्म हो जाएगा, जन्म हो गया होगा, ये कई बातें दुविधा वाली ब्राह्मणों के अंदर हलचल पैदा कर देती और सुनी सुनाई बातों पर कई विश्वास कर लेते। कभी कहेंगे यहां बाबा आता है, यहां मम्मा आती, क्या लगा के रखा, माया का जाल। बाबा मधुबन छोड़ करके उनके पास आने लगा। आप सब इन बातों में, इन बाह्य बातों में जाने के, अनुभव करने के या इस पर रिसर्च करने की कोशिश नहीं करना, फंस जाओगे। बाबा से, मधुबन से डायरेक्ट कनेक्शन है और इस कनेक्शन के आधार से बहुत भावनात्मक रूप से बाबा से जुड़े रहो। बाबा का अव्यक्त पार्ट जब तक हम सब संपन्न संपूर्ण नहीं बने हैं, जब तक यज्ञ की बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हुई है, तब तक ब्रह्मा की आत्मा हमारे साथ साथ है अव्यक्त रूप में। और ब्रह्मा की आत्मा माना शिव बाबा भी नहीं जाएगा, कंबाइंड है दोनों। उस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो, बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूं, मैं आत्मा इस शरीर के साथ कंबाइंड हूं, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, मैं अपने फरिश्ते स्वरूप के साथ कंबाइंड हूं, मैं अपने चतुर्भुज रूप में कंबाइंड हूं। योग के अंदर ये कंबाइंड स्वरूप को बढ़ाओ। जब कहीं भी जाते हो, बाबा मेरे साथ साथ है, और इतना स्नेह से बाबा को आह्वान करो। मैं एक बार हमारे सुरेंद्र भाई के घर में गया था, बैठे सामने हमारे, याद आया। तो जब घर से बाहर निकलने लगे तो इन्होंने सीढ़ी के अंदर एक बाबा का छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, और कहने लगे कि जब भी मैं कहीं जाता हूं तो पहले कमरे में, घर से निकलते समय भूल भी सकता हूं, लेकिन सीढ़ी उतरते समय याद आता है कि बाबा से छुट्टी लिए नहीं जाना है। ऐसा था ना, यही अनुभव था शायद। उसके बाद चप्पल जूते पहनते हैं। इतना अच्छा लगा ये बात कि ये एक विधि है। हम बाबा को इस समय अगर यूज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब बाबा कहता है बच्चे मैं सर्वेंट बन करके अपने बच्चों के साथ हूं, तो हम सब बाबा को यूज करें। कहीं भी जाओ, सफलता प्राप्त करने के दो ही साधन हैं। एक तो कोई भी कार्य में कभी ये नहीं सोचो ये कार्य तो बड़ा मुश्किल है, तो सामने वाला करने वाला नहीं। नेगेटिव संकल्प लेकर के कभी नहीं जाना। बहुत अच्छी तरह संकल्प करो ये कार्य होना ही है, ये भगवान का कार्य है, और जो होगा उसमें सफलता हमारी समाई हुई है। संगम युग पर ब्राह्मणों की जन्म से अधिकार के रूप में सफलता है, इसलिए पॉजिटिव बहुत शुद्ध संकल्प लेकर के निकलो, और निकलते समय बाबा को साथी बना लो। बाबा आपके कार्य के लिए मैं आत्मा इस सेवा के निमित्त जा रही हूं, आप मेरे साथ। आने के बाद भी बताना जरूरी है, सुनाया कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ। बच्चे का अगर बाबा से ठीक संबंध है, कनेक्शन है, सच्चाई है अंदर, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर की सच्चाई भी चाहिए, बहुत भावनाएं भी चाहिए, तो बाबा उसको बहुत अच्छी सफलता देते। हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, सफल होते हैं कार्य। तो मैं समझता हूं कि आप सभी योग के साथ साथ केवल योग नहीं करें, प्रयोग जरूर करें। जो संस्कार हैं 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन कोई न कोई संस्कार जो अंदर अंदर आत्मा को परेशान करते, खुशी गायब कर देते, योग तोड़ देते, विघ्न रूप बनते, उन संस्कारों को महसूस जरूर करो। एकांत में बैठ करके महसूस करो, और फिर एकाग्र चित्त होकर के जैसे कोई लेजर किरणें डाली जाती हैं। आजकल ऑपरेशन भी कैसे करते हैं, लेजर किरणों से करते हैं ऑपरेशन, कहते हैं चीत फाड़ नहीं करना, लेजर किरणें डाल देते। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की याद की किरणें, शक्तियां सर्व लेजर किरणों की तरह एकाग्र करके, स्थिर करके डाल दो, शरीर के रोग भी खत्म हो, और अगर कोई संस्कार है वो भी बदल जाए, और अगर कोई विघ्न रुकावटें आ रही वो भी चेंज हो जाए। और वर्तमान समय ये प्रकृति बहुत नुकसान कर रही है, अपना तमोगुण रूप है उसका। और बाबा कहता है मेरे बच्चे प्रकृति जीत बन करके इनको सकास्त, इनको भी सहयोग की जरूरत है। कार्य तो अपना वो करेंगे, स्पीड से करेंगे, लेकिन हम आत्माएं जैसे सुरक्षित हैं बाबा हमें ऐसे रखे, और साथ साथ हर आत्मा उन दुखों से सहज मुक्त हो जाए, प्रकृति उनको ज्यादा तंग न करे, हम सब अपनी योग की किरणें, योग के वाइब्रेशन प्रकृति के पांचों तत्वों को भी अवश्य दे। बहुत स्नेह से कि प्रकृति सतो प्रधान थी, फिर से बनेगी, अभी उसको हमने बिगाड़ा है, हम फिर से इसे क्षमा लेते, इसको स्नेह शक्ति देते ताकि ये हम सबको मदद करे। ऐसे शुभ संकल्प करके योग करो। प्रकृति पति हमारा बाबा है, परम पुरुष उसको कहते हैं, आत्मा पुरुष है, वो परम पुरुष है और ये प्रकृति है, तीन चीजों का खेल है। अगर एक भी इसमें नीचे ऊपर हो जाए तो खेल नहीं चलेगा। इसलिए प्रकृति का हमें साथ मिला है, शरीर भी हमारी प्रकृति पांच तत्वों की है, इस पर भी प्रयोग करके इसको हम निरोगी बनाएं, इस बाह्य प्रकृति को योगदान दे करके सहयोगी बनाएं और अपने संस्कारों पर योग का प्रयोग करके संस्कार शुद्ध निर्मल पवित्र बन जाएं और विघ्न हमारे मार्ग में जो है खत्म हो जाएं। उसके लिए हम सब शुभ भावनाओं से संपन्न बने, एकाग्रता का अच्छा अभ्यास करें। जब योग करो भ्रकुटी आसन पर बैठ करके बाबा की किरणें लो और उन किरणों को रिफ्लेक्ट कर दो। जैसे कांच के ऊपर किरणें पड़ेंगी तो क्या होंगे, अगर साफ स्वच्छ कांच है और सूर्य की किरणें आई तो किरणें पड़ते ही वो अपना रूप बदल देंगी। एकाग्र अगर किरणें हैं तो अग्नि भी पैदा कर सकती है। ऐसे सूर्य कुछ नहीं कर रहा है, गर्मी कर देगा, 50 डिग्री हो गई, गर्मी हो गई, लेकिन अग्नि का रूप तब बना जब किसी कांच के द्वारा रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे ही बाबा की किरणें अगर मुझ कांच के ऊपर आई, शुद्ध पवित्र कांच है, कोई भी प्रकार के मैल नहीं, गंदगी नहीं, व्यर्थ विचार नहीं, बहुत शुद्ध भावना से हम बैठे, बाबा की किरणें आएंगी और जो शुद्ध संकल्प होगा कि ये हो जाए, इसके विघ्न खत्म हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए, इसका डिप्रेशन खत्म हो जाए या प्रकृति के तत्व सत्व प्रधान बने, सुख दें, संकल्पों के आधार से हम प्रयोग कर सकते हैं। संकल्प को सोने नहीं बनाना है, लेकिन बहुत एकाग्र और शुद्ध संकल्प में स्थित होकर बाबा की किरणें लो और इसका प्रयोग करो। इसकी रिजल्ट आपको अपने आप दिखाई देगी। तो अभी हम आधा घंटे आपके साथ हैं, 15-15 मिनट दो प्रकार की ड्रिल करेंगे, ठीक है? रुकना नहीं है ना, 7 बजे तक कोई नहीं हिलना। जितनी अच्छी एकाग्रता का अभ्यास आप कर सकते हैं, जो टाइट बैठे हैं ना, थोड़ा सा कोई कोई जो कुमार या हल्के शरीर से नीचे बैठ सकते हैं, बैठ जाओ। टाइट होके सोफे पर भी नहीं बैठना है, अलग खुले जैसा, बाबा कहता शरीर से शरीर टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वाइब्रेशन भी फिर ट्रांसफर होने लगते हैं। तो हो सकता है कोई कोई जो टाइट बैठे ना, कोई नीचे बैठ सकते हैं तो बैठ जाओ। हर एक अपने भ्रकुटी आसन पर अपनी चमकती हुई मणि को देखो। मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र चमकता हुआ हीरा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। इस सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे सर्वशक्तियों का अनुभव करते हुए बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बैठो, लाइट लाइट के साथ कंबाइंड है और उसके बहुत शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन सर्व शक्तियां मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है, अनुभव करो। ब्रकुटी आसन पर मैं कंबाइंड स्वरूप में स्थित आत्मा एक बहुत सुंदर सूक्ष्म लाइट के शरीर में प्रवेश कर रही हूं। मेरे चारों ओर बहुत पवित्र शुद्ध सर्वशक्ति संपन्न आभा मंडल है। मैं उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने आकारी वतन में जहां स्वयं हम सब के अति प्रिय बाप दादा हम सब का आवाहन कर रहे हैं, उस अव्यक्त वतन में बाप दादा की स्नेह भरी बाहों में समाने का अनुभव करें। अपने आकारी वतन से निराकारी वतन में जाने के लिए मैं आत्मा दिव्य बुद्धि के विमान से उस सुनहरे लाल प्रकाश के बीच उस निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्म लोक अपने निज घर में उस ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल सानिध्य में चमकते हुए स्टार के रूप में उस घर का अनुभव कर रही हूं। मैं सर्वशक्ति मुझे संपन्न मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। शांति के सागर में पवित्रता के सागर में मैं आत्मा समा गई हूं।
मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया
बच्चिया।